ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। रस के बारे में हम बोलते हैं, भक्ति रस, विशेषकर भक्ति रस। तो भक्ति रस भक्ति करने से प्राप्त होती है। तो भक्ति हम इस जगत में करते हैं, परंतु समझना चाहिए कि इस जगत के बाहर वैकुंठ जगत है, जिसमें सब मुक्त पुरुष वहां रहते हैं और वहां पर भगवान की सेवा करते हैं और भगवान के साथ परस्पर रास आस्वादन करते हैं। तो वैकुंठ जगत है। वैकुंठ का क्या मतलब है? विगत कुंठ इति वैकुंठ। कुंठ का मतलब चिंता। वहां पर कोई चिंता नहीं होते हैं। यहाँ पर सकुंठ, ये इस देश, इस जगत कुंठ या चिंतामय है, लेकिन वहां पर खाली सुख का अनुभव होते है। वैकुंठ जगत में वहां पर कोई मृत्यु नहीं होते, बीमारी नहीं होते, फैक्ट्री जाना, ऑफिस जाना, वैसे मेहनत करना वो भी नहीं होते। खाली श्री कृष्ण के साथ लीला विलास करना है। वो विशाल वैकुंठ जगत में क्या होते है? कथा गानम नाट्यम गमनम। कथा गानम, वहा सब जब बात बोलते है तो कैसे बोलते है? गाते है, तो इतना सुखी है, इतना प्रसन्न रहते है कि खाली बात नहीं बोलते, गाते हैं। और कथा गानम नाट्यम गमनम, जब इधर उधर जाते हैं तो खाली पैदल से नहीं जाते, नाच के जाते हैं, इतना सुखी है। तो वहां पर इतना सुख होते है, प्रेम सुख, कृष्ण प्रेम सुख। नित्य महोत्सव, भागवत में वैकुंठ का वर्णन है कि वहां पर हमेशा प्रेम का महोत्सव होते है हर रोज। तो वैसे होते है वैकुंठ जगत, वहां पर सब कुछ सच्चित आनंदमय है। उसका क्या मतलब हम बहुत बार सुने, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद उसका मतलब, सत का मतलब सत्य या शाश्वत, और सच्चित, चित का मतलब चिन्मय, सचेतन, और आनंद सबसे मस्त है। आनंद का क्या मतलब? तो वहां पर सब कुछ दिव्य, चिन्मय, शाश्वत और आनंदमय रहते। लेकिन इस भौतिक जगत की क्या स्थिति? असत, अचित, निरानंद। असत उसका मतलब क्या है? सब मिथ्या है। मिथ्या कैसे है? मिथ्या, मैं हूं, आप है, तो कैसे है मिथ्या? हम है, हम की अस्तित्व है, लेकिन यही असत्य है कि मैं सोचता हूं मैं इस शरीर हूं, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बाप है, लेकिन यही सब अशाश्वत है, इसलिए असत है। मेरा बाप जो है तो कुछ दिन के बाद मर जाएंगे और मैं भी मर जाऊंगा, तो वो दूसरा जगह में जन्म लेंगे और मैं दूसरा जगह में जन्म लूंगा, तो वो संबंध जो है, मैं पुत्र वे पिता, वो असत है। और सब कुछ जो हम सोचते हैं कि पैसा लाने से, सिनेमा जाने से, बीच चौपाटी जाने से हम सुखी होंगे, वो सभी प्रयास मायिक सुख अनुभूति के लिए, वो सब असत है, क्योंकि इस भौतिक सुख से कोई सुख नहीं होते। तो इसलिए सब कुछ असत और अशाश्वत, उस प्रकार भी असत और अचित, सब चेतनमय है, हमारे चेतन है, लेकिन क्या चेतन नहीं है? यही चेतन कि मैं भगवान का दास हूं, वो सही चेतन है कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा परम ब्रह्म, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो इस प्रकार हम अचेतन है, हमारे शाश्वत और दिव्य कर्तव्य क्या है, हमारी शाश्वत स्थिति क्या है, हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए अचेतन, असत, अचेत और निरानंद, वो सब आनंद जो है इस जगत में, तो आनंद नहीं है। सुख का नाम में चलते, सुख की छाया है, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं होते। तो इसलिए इस जगत असत, अचेत, निरानंद है, और सब रास जो यहाँ पर भी यहाँ पर है वो भी असत, अचेत और निरानंद है। जैसे वो एक ग्लास दूध देखते हैं और जैसे अच्छा चीज है, लेकिन वास्तव में वो विष है। अगर हम पियेंगे तो अगर दूध देखते हैं हम सोचते हैं वो अच्छा चीज है, हमको पुष्टि करेंगे, स्वाद भी अच्छा होगा, लेकिन उसका खाने से क्या मिलते है, जैसे नीम का रस और जैसे विष। स्वाद जैसे नीम का रस और उसका प्रतिक्रिया जैसे विष, तो उस प्रकार मायिक सुख। तो हम सोचते हैं वो अच्छा होगा, लेकिन क्या होते है, अच्छा नहीं होते है। तो वहां जानना चाहिए वैकुंठ जगत, जिसमें कोई चिंता नहीं होते और उसका अवस्था सच्चित आनंदमय है। जैसे भगवान सच्चित आनंदमय है, जीव भी सच्चित आनंदमय है। भगवान विशाल है और हम बहुत ही छोटे हैं, लेकिन जैसे भगवान हम भी सच्चित आनंदमय है, और वास्तविक रस वो सच्चित आनंदमय प्रेम संबंध जो श्री कृष्ण के साथ स्थापित होना चाहिए उसमें मिलते। तो इसलिए वैकुंठ जगत जानना चाहिए। वहां पर भक्तों, जो भगवान की शुद्ध भक्तों, वैकुंठवासियों, वहां पर वैकुंठवासियों पंच प्रकार रस में नित्य प्रेम सुख आस्वादन करते हैं। तो पहला रस शांत रस कहलाते, जैसे वैकुंठ या गोलोक में घास, श्री कृष्ण की वंशी, सभी वृक्ष, भगवान के गाय, सब शांत रस में है। मतलब श्री कृष्ण की महत्व को स्वीकार करते और श्री कृष्ण की भक्ति करते, लेकिन वो भक्ति इतना उन्नत नहीं है जैसे दूसरे भक्तों का। तो शांत रस वैकुंठ जगत में घास, लकड़ी, सब कुछ, आकाश, सब चिन्मय सचेतन है और सब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो दूसरी रास दास्य रास कहलाते हैं। दास्य, दास्य का मतलब दास, किंकर, सेवक, सब भगवान के दास है और सब जो भगवान की सेवा करते हैं भगवान के दास है। लेकिन दास्य रस में वो सेवा भाव बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे वृंदावन में पत्री, रक्तक, ये सब भगवान के दास है। और सबसे प्रसिद्ध दास कौन है, हनुमान, रामचंद्र अवतार का प्रधान सेवक हनुमान, सदैव दास्य रस से प्रेम आस्वादन करते हैं हनुमान। श्रीनाथे जनकी नाथे अभेद परमात्मने तस्मात् मम सर्वस्वम् राम कमल लोचना, एक प्रसिद्ध श्लोक है रामायण से, जिसमें हनुमान बोलते कि मैं जानता हूं कि श्रीनाथ, श्रीनाथ का मतलब लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, विष्णु, नारायण, और जानकी नाथ मेरा कमल लोचन राम, दोनों अभेद है, एक ही है, परमात्मा भगवान है, फिर भी मेरी इच्छा है वो नारायण राम रूप में सेवा करना। तो वो दास्य भाव है कि हनुमान भगवान श्री विष्णु नारायण की सेवा का अवसर मिलके भी इतना प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उनकी इच्छा हृदय की इच्छा है राम रूप में भगवान की सेवा करना, तो वो दास्य रास है और दास्य रास में भगवान के सेवक गण भगवान के लिए सब प्रकार सहायता करते और उनकी सेवा करते, अंग सेवा और उनका स्नान करने के लिए सब तैयारी करते हैं, उनकी भोजन देने के लिए सब तैयार करते हैं। तो ये दास्य रास है और साख्य रास है भगवान के साखा या मित्रगण। तो सबसे प्रसिद्ध कौन है? अर्जुन भगवान का साखा द्वारका लीला में और वृंदावन में श्री कृष्ण के साखागण श्रीदाम सुदामा बलराम। अर्जुन दूसरा अर्जुन है, एक गोपागण जो वृंदावन में थे, तो सब भगवान के दोस्त है। और वात्सल्य भाव चौथवा तीसरा रास साख्य रास और चौथवा ये वात्सल्य भाव वात्सल्य रास, जिसमें भक्तों सोचते हैं मैं भगवान का बाप हूं, ये भगवान मैं भगवान का माता हूं। तो कैसे संभव हो? पिता हम वस्य जगत माता धात पितामह, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके पिता हूं, मैं सबके माता हूं, मैं सबके पितामह हूं, मैं सब चीजों का आधार हूं। तो कैसे कई भगवान के पिता हो सकते, कैसे संभव हो? क्योंकि अनादिर आदिर गोविंद सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवम अथ सर्वं प्रवर्तते, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मेरे से निकलते हैं, मैं सब कुछ का स्रोत हूं। तो कैसे कई भगवान का पिता हो सकते? वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन प्रेम से वासुदेव देवकी यशोदा नंद महाराज दशरथ कौशल्य इत्यादि भक्तगण प्रेम भाव से ऐसे सोचते हैं कि मैं भगवान का पिता हूँ, मैं भगवान का माता हूँ। और वो भावना ग्रहण करने के लिए भगवान की दूसरी आध्यात्मिक माया है, माया शक्ति है जो योग माया कहलाते हैं, जिसके द्वारा दशरथ देवकी इत्यादि महान भक्तगण सोचते हैं कि मैं भगवान का पिता हूँ, मैं भगवान का माता हूँ। और भगवान भी अपनी माया शक्ति से प्रभावित होते हैं। और श्री कृष्ण जो भगवान है, जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, सोचते हैं कि मैं यशोदा माता का पुत्र हूँ, ये यशोदा मेरी माता है। तो ये योग माया है जिससे भक्तों सोचते हैं कि मैं भगवान का पिता या माता हूँ। माँ यशोदा सोचते हैं कि अगर श्री कृष्ण अगर मैं श्री कृष्ण को भोजन नहीं खिलाता हूँ तो वो मर जाएगा, तो मेरा पुत्र है। और हमेशा श्री कृष्ण के लिए बहुत स्तव स्तुति करते हैं श्री कृष्ण का रक्षा करने के लिए, तो श्री कृष्ण सबको रक्षा करते। लेकिन ये योग माया ये प्रेम माया का प्रभाव से यशोदा माई सोचते हैं कि मैं श्री कृष्ण की रक्षा करता हूँ और मैं नारायण को स्तुति करता प्रार्थना करता हूँ, जैसे श्री कृष्ण का कोई तकलीफ नहीं होगा। तो नारायण को प्रार्थना करते हैं जैसे कि श्री कृष्ण की रक्षा होगी, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं नारायण है। तो देखो ये माया किस प्रकार माया, भौतिक माया नहीं है, ये वैकुंठ या गलोक जगत का प्रेम विकार है। और सबसे ऊपर गंभीर रस क्या है? श्रृंगार रस या माधुर्य भाव, जिसमें भगवान के भक्तों सोचते हैं मैं भगवान की प्रेमिका है, वो सबसे अति निगूढ़ है। साधारण लोग इसको नहीं समझ सकते, जैसे वृंदावन में गोपियां रास क्रीड़ा करते हैं श्री कृष्ण के साथ, जैसे द्वारका में द्वारका रानी हूँ, सोचते हैं मैं भगवान की पत्नी हूँ। जैसे वैकुंठ में लक्ष्मीगण सोचते हैं कि मैं भगवान की पत्नी हूँ। तो कैसे भगवान की पत्नी हो सकती? पति पत्नी संबंध इतना घना है, तो कैसे कोई भगवान भगवान से इतना घना संबंध स्थापन कर सकते? लेकिन श्री कृष्णा की इच्छा है। श्री कृष्णा एक व्यक्ति है, मैं व्यक्ति हूँ, आप व्यक्ति है, श्री कृष्ण भी व्यक्ति है। वे परम पुरुष है, साधारण पुरुष नहीं है। फिर भी उनकी भावना है, इच्छाएं है। जैसे हम साधारण भौतिक कामना करते हैं, वैसे नहीं है। श्री कृष्ण की इच्छाएं सभी चिन्मय दिव्या त्रिगुणातीत है। वो रास आस्वादन करने के लिए, तो रास यही जीवन का सार है। लेकिन किस प्रकार रास? प्रेम रास, शांत रास, दास्य रास, साक्य रास, वात्सल्य रास, माधुर्य रास। सबसे उत्कृष्ट है माधुर्य भाव, जो विशेषकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु इस पुस्तक में उसका विवरण मिलते हैं। तो वो सब विशेषकर गोलोक वृंदावन में मिलते हैं। ये वैकुंठ जगत है, वैकुंठ जगत में भी विभाजन होते हैं। वैकुंठ है जिसमें लक्ष्मी नारायण की सेवा करना है, और द्वारका है, अयोध्या है, मथुरा है, वृंदावन है। इस भौतिक जगत में, इस पवित्र भारत भूमि में वृंदावन भी है, मथुरा भी है, द्वारका भी है, अयोध्या है। तो आपका सवाल हो सकता है, तो कैसे ये सब जाएगा? पवित्र चिन्मय दिव्य है। शास्त्र का विचार है कि ये सब धाम जो है भगवान का आपन स्थान है, जो इस भौतिक दुनिया में प्रकाशित होते हैं। तो साधारण अंकों से नहीं देखना चाहिए। आप वेस्टर्न रेलवे से द्वारका जा सकते हैं, मथुरा जा सकते हैं, तो वो जाएगा साधारण जाएगा नहीं है। वो द्वारका मथुरा इत्यादि वो सब जो इस जगत में है वो भी चिन्मय है, लेकिन हम साधारण अंकों से नहीं देख सकते। तो समझना चाहिए ये भगवान की लीला स्थली है। और आगा दिव्य अंकों से देखना है, तो अभी तक वृंदावन में श्री कृष्ण का लीलाएं देख सकते हैं। तो वो सब जगह है किस लिए? जैसे कि हम जो साधारण व्यक्ति है वहां जा सकते हैं, और वो प्रेम रस का बिंदु, कम से कम एक बिंदु मिल सकते हैं। ये सब जगह का प्रभाव है, द्वारका, मथुरा, वृंदा, वो सब जगह में वो भक्ति भावना बहुत घना होते हैं। इसलिए वो सब जगह जानना चाहिए। अगर हमारी रुचि है वृंदावन जाने के लिए, मथुरा जाने के लिए, तो धीरे धीरे वो पूरी भक्ति भावना मिलेगा। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी सबको अनुमोदन करते हैं, वृंदावन जाओ, मथुरा रहो, द्वारका रहो। तो जो भारतीय है ये अवसर मिलते हैं, आप आसानी से वृंदावन जा सकते, दिल्ली जा, मथुरा जा सकते, द्वारका जा सकते। तो ये हमारे निवेदन है, आप जाइए वृंदावन, वृंदावन जाए। देखते हैं बहुत लोग जो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, लेकिन कभी भी वृंदावन नहीं जाते। लेकिन आज श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद की कृपा से बहुत दूर से, विदेश से बहुत भक्त आते हैं वृंदावन की धूली की पूजा करने के लिए। तो आप भी जाइए, ये दुर्लभ मानव जीवन नष्ट नहीं कर चाहिए। वृंदावन जाए, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करो, और इस प्रकार आप भी इस कृष्ण प्रेम भक्ति रस आस्वाद कर सकेंगे। तो यही हमारे निवेदन है, आप करो, आप भक्ति करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, वृंदावन जाओ। कम से कम एक बार जीवन में वृंदावन जानना चाहिए। तो यही हमारे निवेदन है।